हरे कृष्ण, पिछले चंद दिनों से आप सबके कुछ क्वेश्चंस मानस पटल पर इस तरह छा गए हैं कि उठते बैठते बस उन्हीं के विषय में विचार करती हूँ। क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इन सबका क्वेश्चंस का आपस में क्या संबंध है, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर करेंगे। सबसे पहला और मुख्य क्वेश्चन है आपका कि व्हाई कृष्ण क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स, भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया। उसके बाद जीव आत्मा जो भगवान की पराशक्ति है, इस आत्मा को उस अपराशक्ति से कुछ लेना देना नहीं। अपराशक्ति कौन सी है? 24 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और गुण, ये सब मिलकर जो है क्या बनता है? अपरा प्रकृति। इससे आत्मा जो कि पराशक्ति है, इसको इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु अपराशक्ति में गुण है, अपराशक्ति में 3 गुण है, इस वजह से हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसमें पराशक्ति यानी आत्मा की क्या गलती है कि उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। अब जाहिर है भगवान ने अपराशक्ति और पराशक्ति को मिला दिया है, जिससे जीव उत्पन्न हुए हैं। अब मिलाप हुआ है तो रिलेशन तो होगा ही, इसमें हमारी यानी जीव आत्मा की क्या गलती है? दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद भगवान ने हमें इस प्रॉब्लम में डाला ही क्यों है कि हमें इन गुणों से बचना पड़े। आगे एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि चलो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की योनि तो मिल गई, अब ऐसे बहुत से जीव हैं जिनकी पूरी उम्र बीत जाती है और उन्हें कोई ज्ञान तक देने वाला नहीं होता है, वो पूरी जिंदगी अपराध करते रहते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो अपराध कर रहे हैं। अब उन्हें तो कोई ज्ञान नहीं होता, जैसे कि मुस्लिम लोग को कोई ज्ञान नहीं होता, वो नॉन वेजिटेरियन खाना उनकी मजहब में बिल्कुल अलाउड होता है। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है जो उस धर्म में उत्पन्न हुआ है और उसे 84 लाख योनियों की सजा मिलती है? उसने तो वही किया ना जो उसे सिखाया गया। बस यही प्रश्न है। अब एक एक करके इनका आंसर देंगे, लेकिन इनको आंसर देने से पहले मैं अपने गुरु महाराज और गौरंग महाप्रभु और अन्य समस्त वैष्णवों को प्रणाम करना चाहूंगी। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवास श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथ वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितास्य। देखो सबसे पहले ये जो सारे प्रश्न आपने पूछे हैं, इन प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं और मैं प्रयास करूंगी कि गुरु और गौरंग की कृपा से एक एक करके हर एक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दूं। आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्रश्न को और उसके उत्तर को श्रद्धा से सुनना है, चैलेंजिंग मूड नहीं रखना है जो मैं बता रही हूँ। और मैं कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं बताऊंगी, हर चीज को शास्त्र प्रमाण दूंगी, पेज नंबर बताऊंगी, लाइन नंबर बताऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। आप उसको मेरे साथ भले टेली करना, लेकिन आप यही श्रद्धा जो देखो भगवान श्री कृष्ण 4.39 में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का क्या मतलब है? कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है और जो सुन गुरु साधु और शास्त्र जो हमें सत्य बता रहे हैं, उसको मैं हृदय में धारण करूंगा, उस पर मैं विश्वास करूंगा, ये होता है श्रद्धा का मतलब। अब पहला और मुख्य प्रश्न ये है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया क्यों। थोड़ा सा गौर से विचार करेंगे तो इस प्रश्न में भी दो प्रश्न सम्मिलित हैं। एक ये व्हाई कृष्ण क्रिएट ह्यूमन बीइंग, भगवान ने कृष्ण भगवान ने ह्यूमन बीइंग्स को या इंसान को क्यों बनाया, और दूसरा सवाल इसी के साथ ही उत्पन्न हो रहा है, what was the Krishna's purpose behind creation of human being? यानी कि एक तो ये कि उसने बनाया क्यों, और दूसरा ये कि उस मनुष्य के बनाने के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य था। ये दोनों एक ही बात में ना कि क्यों बनाया। अब पहले इस बात को समझते हैं कि इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया। अब जैसे हम मनुष्य हैं, हम जो भी कार्य करते हैं अपनी शक्ति द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, वो सब क्यों करते हैं? थोड़ा पहले अपने को देखें, फिर भगवान को देखते हैं। आप जो भी कार्य करते हो, अगर आप ना नॉवेल लिखते हो तो क्यों लिख रहे हो, अगर आप शॉप पे कार्य कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप डिजाइनर हो तो डिजाइन क्यों कर रहे हो, अगर आप ना कारपेंटर हो तो काम क्यों कर रहे हो, मतलब आप जो भी हो, जो भी आपके अंदर शक्ति है, जो भी आपके अंदर पावर है, उसका यूज क्यों कर रहे हो। जैसे जब कोई साइंटिस्ट कोई भी इन्वेंशन करता है तो उद्देश्य क्या होता है कि वो क्यों कर रहा है, और उसके उसके बनाने का कारण क्या है, वो बना क्यों रहा है। अब देखो, इसके दो उद्देश्य होते हैं, पहला तो वो कि बना क्यों रहा है, और दूसरा ये कि उसके बनने के बाद उसको यूज में कैसे लिया जाए। इसी तरह यही दो क्वेश्चन है ना कि कृष्णा ने बनाया क्यों और बनाने के पीछे पर्पस क्या था। अब बना क्यों रहा है, उसका सीधा सा उत्तर है आनंद प्राप्त करने के लिए। जैसे आप अपनी शक्ति से कोई भी काम कर रहे हो, अपनी शक्ति को यूज करके आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उससे आनंद लेना चाहते हो। जैसे मोबाइल, अब आपके पास धन है, ये धन आपका अपना आप है, तो जो कुछ भी संसार में कृष्ण का दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम जो समझते हैं हमारे पास जो पावर है, धन का पावर है, तो उसको यूज करके आप एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आते हो, बड़ा सा, और आप क्यों ले रहे हो, आपने अपनी अपनी शक्ति को यूज करके वो काम क्यों किया, क्यों लेकर आए हो, आप आनंद प्राप्त करने के लिए। कभी एलसीडी लेकर आते हो, कभी बड़ा बड़ा बंगलो बनाते हो, कभी उसमें ना गाड़ी लेकर आते हो, और कभी गार्डन, कोई माली होता है गार्डन में, बहुत सारे वृक्ष उगाता है, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसका पहला उद्देश्य तो ये है कि आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो। मतलब जैसे पहले गर्मियों में हैंड फैन हुआ करते थे, फिर इलेक्ट्रिक फैन इन्वेंट हो गए, क्यों, आनंद प्राप्त करने के लिए। इसके बाद एयर कूलर, और अब एसी का आविष्कार हुआ, क्यों, आनंद प्राप्त करने। अब जो बना रहा है उसका मुख्य उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, चाहे वो अपनी इस इन्वेंशन से, अपना जो ये प्रोडक्ट बना रहा है उससे आनंद प्राप्त करे, या उससे मिलने वाले धन से, या उस जो प्रोडक्ट उसने बनाया है, कोई चीज बनाई है, जैसे कंप्यूटर किसी ने बनाया, अब उस इन्वेंशन से उसको आनंद प्राप्त करना है, उससे मिलने वाले धन से, या उससे मिलने वाले फेम से, जैसे कीर्ति भी मिलेगी ना उसको, तो उसे उससे भी, कोई कोई लोग को धन की आवश्यकता नहीं होती लेकिन कीर्ति होती है, इसलिए वो कार्य करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हो। अब मैं सारी चीजें नहीं बता सकती, लेकिन छोटा छोटा हम जो आधुनिक हम यूज कर रहे हैं उन चीजों को लेते हैं, वो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, या उससे मिलने वाले धन से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, या फेम से। अल्टीमेटली हम जो भी कार्य अपनी शक्ति को यूज करके करते हैं, वो कार्य करने का एकमात्र लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। अब क्योंकि वो समर्थ है, उसके पास शक्ति है, उसके पास बुद्धि है, वो अपनी इन शक्तियों को यूज करके अपने लिए आनंद के लिए कुछ बनाता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। आपके पास जो चीज के लिए शक्ति है, जो चीज बुद्धि है, आप उस अपनी शक्ति को यूज करके अपने लिए कोई भी आनंद की वस्तु खरीद सकते हो या बना सकते हो। कोई भी नहीं रोकेगा, कोई बोलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी शक्ति को यूज करके, नहीं। क्या कोई ये कह सकता है कि आप क्यों बना रहे हो? जैसे कोई मोबाइल लेता है, कोई कंप्यूटर, एलसीडी, जो कुछ भी जो बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों कर रहे हैं? आनंद को प्राप्त करने के लिए, वो अल्टीमेटली इन चीजों से आनंद हासिल करना चाहते हैं, या धन हासिल करके, या फिर फेम हासिल करके, या फिर उस चीज को बनाने के टाइम पर, क्योंकि अपनी शक्ति को यूज करके वो चीज क्रिएट करते हैं, उससे वो आनंद, पहला मुख्य कारण। अब हमारे साइंटिस्ट की बुद्धि जितना काम करेगी, उनके पास जितनी जितनी शक्ति होगी, देखो जो कोई इंसान संसार में, सब लोग इंसान कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। घर पर बैठी हुई महिला जो एक हाउसवाइफ है, वो भी अपनी शक्तियों को यूज करके कभी कपड़े बनाती है, कभी खाना बनाती है, कभी ना कुछ और, कभी अचार बनाती है, कभी और कुछ, मतलब कुछ न कुछ बना रही है उसके पीछे उसका एक रीजन पहला बहुत मुख्य है कि उससे आनंद चाहिए। आनंद कैसे, वो उसकी अपनी परिभाषा है, वो खा के आनंद प्राप्त करना चाहती है या खिला के आनंद प्राप्त करना चाह रही है। यानी आपके पास जो जो शक्तियां हैं उसको आप यूज करते हो बगैर किसी विविधा के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन से आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब जितनी जिसके पास शक्ति होती है उतना उसको यूज करता है। और हम सब जीवों के अंत, जीवन के अंत तक, यानी कि जब सारे लोग जीवन के अंत तक अपनी शक्ति को यूज करते हैं, क्यों? आनंद प्राप्त करने के लिए, ये उनका अधिकार है। हमारे पास जो शक्ति है उसको यूज करके आप अपनी आनंद प्राप्त कर सकते हो, आपको नहीं रोका जा सकता। अब देखो यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बता दूं कि आप जब कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, उसके पास अपना कुछ नहीं, अपनी कोई शक्ति नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ 7.5 में बताया, भूमिरा पोनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टरा अपरेयम मितस्तन्या प्रकृतिम विद्धि मे परा जीव भूता महाबाहो येदं धारयति जगत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस संसार में जो कुछ भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो, आपने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी यूज किया है वो इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जैसे जो कुछ भी खाते हैं वो सब पृथ्वी से आता है, है ना, जो लकड़ियां और निकलती हैं, जो हम वस्त्र पहनते हैं, जो घर बनाते हैं, वो सब पृथ्वी से, ठीक है, और जल से, जो कुछ भी जैसे उगता है, वर्षा से उग रहा है और समुद्र से जल आता है, जो भी जल को यूज करके, मतलब इलेक्ट्रिक भी जल से होता है, पृथ्वी जल अग्नि, और अग्नि से भी है ना मिलकर ये सारी चीजें जो भी हमें चाहिए होती हैं वो बनती हैं, पकती हैं। वायु, वायु से सांस लेते हैं और है ना वायु से हम जीते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश का मतलब होता है इधर, और स्पेस, स्पेस है तो मूव कर रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और ये सारी चीजें मिलकर तो सारी चीजें बनती हैं, और मन बुद्धि अहंकार इनको मिलाने के लिए ये चीजें चाहिए, बुद्धि चाहिए, अक्ल चाहिए। भगवान ने कहा ये जो सारी चीजें अब तक यूज करते आ रहे हो ना, मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, मेरी चीज, ये मेरी बुद्धि, ये सब कहते कहते थकते नहीं हो, वो सारी मेरी है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। जब पैदा हुए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे संसार में, खाली हाथ आए थे। तो यहाँ पर जो चीज को हम अपना कहकर यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा कृष्ण का है, डेफिनेटली कृष्ण का है, क्योंकि भगवान साफ साफ कहते हैं कि ये मेरी शक्ति है। और इस संसार में आने के बाद भी जीने के लिए जो कुछ चाहिए, वी ऑल डिपेंडेड ऑन कृष्ण, सूर्य प्रकाश कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त संसार का कोई साइंसदान नहीं दे सकता। सांस लेने की हवा, कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा है जो आपको पूरी जिंदगी ऑक्सीजन प्रोवाइड करे? और खाना, जो कृष्ण के अतिरिक्त कोई है जो धरती बनाकर उसके अंदर से वृक्ष को उगाकर आपका खाना, आपको अनाज प्रोवाइड कर सके? जो कुछ भी आज तक यूज किया अपनी शक्ति मानकर, जिस तरह जिसका दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, जो भी किया, वो सब कृष्ण का है। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, लेकिन है कृष्ण का, लेकिन हमारे पास जितनी है, जितनी शक्ति है, उनको हम अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से यूज करते हैं। कोई आपको बोल सकता है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है तो इसको यूज मत करो, या यूज क्यों कर रहे हो आप अपनी, अगर आप है ना मोबाइल बना सकते हो, ठीक है, घर पे बैठ के आप मोबाइल बना रहे हो, अपनी शक्तियों को, बुद्धि को, और है ना ये सब तत्वों को मिलाकर आप कर रहे हो, तो कोई आपको ऐसे कहेगा कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा? नहीं कहेगा ना। आप अगर कोई कहेगा तो भी बोलोगे मेरी मर्जी, मेरी चीज है, मैं करूं, भले मेरी शक्ति है, मैं उसको जैसे भी यूज करूं, किसी को क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह से भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, अब देखो, अब हमारी शक्तियां सीमित हैं और कृष्ण की शक्तियां असीम हैं। मुख्य शक्तियां जो कृष्ण की हैं वो है पराशक्ति और अपरा प्रकृति, यानी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो ना। अपरा प्रकृति कौन सी है? ये जो लो प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच विषय और गुण जो मादी भौतिक गुण है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति क्या है? जीव आत्मा। भगवान ने इन दोनों को मिलाकर मनुष्य बनाया। भगवान की शक्तियां, भगवान की मर्जी है, भगवान अपनी प्रकृति अपनी शक्ति को यूज करने का पूरा पूरा अधिकार है। जब मनुष्य जिसकी अपनी है ही नहीं वो भी अपनी चीज को अपना कहकर यूज करता है, उसको कोई भी है ना मना नहीं करता, पूरा अधिकार रखता है, तो कृष्ण को भी अधिकार है कि वो इन दोनों शक्तियों को, भगवान इन दोनों को मिलाकर मनुष्य बनाता है। क्यों बनाता है? अब ये क्वेश्चन है ना। तो जैसे मनुष्य अपने सारे कार्य कर रहा है आनंद प्राप्त करने के लिए, तो भगवान ने भी ये मनुष्य क्रिएट किए हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। देखो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ऑथेंटिक शास्त्र विदित चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, रसिक शेखर प्रभु, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो रसिक शेखर है, अर्थात सब रसों का आस्वादन करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सारे रसों के सागर भी वे स्वयं ही हैं, यानी रसो वैसह उन्हें कहा जाता है कि वो सारे जो रस हैं जिनका वो आनंद लेना चाहते हैं वो उन्हीं के अंदर है। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, हम जिस चीज से आनंद लेना चाहते हैं वो हमारी अपनी क्रिएशन नहीं है, वो बाहर से भगवान की दी हुई चीजों से हम करते हैं, लेकिन भगवान के अंदर वो आनंद घन है। ऐसा नहीं कि भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए कहीं से जाना पड़ेगा, सारा का सारा उनके अंदर ही है और वो अपने अंदर से ही उन चीजों को है ना बनाता है और उनसे आनंद हासिल करना चाहता है। अब जहां पर भगवान रहता है गौलोक वृंदावन धाम में, वहां पर भगवान की कुछ वासनाएं पूरी नहीं होती, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब देखो संसार में आकर मनुष्य इच्छाएं करता है ना, पैदाइश से लेकर अंत तक इच्छाएं कर रहा होता है। क्यों करता है पता है? क्योंकि वो भगवान का अंश है और ये इच्छा जो है वो कृष्ण के अंदर भी होती है। ये आनंद प्राप्ति की इच्छा, कृष्ण अपनी शक्तियों को यूज करके उससे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और गौलोक वृंदावन धाम में उनकी कुछ वासनाएं पूरी नहीं होती है, कुछ रसों के आस्वादन से वे वंचित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कृष्ण की नित्य प्रिया है, प्रेमी केवल कृष्ण है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई माया नहीं है, परंतु वो प्रेम का असली आनंद लेना चाहते हैं। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए माया का खेल रचाते हैं, अपनी दोनों शक्तियों यानी अपरा शक्ति और पराशक्ति को मिलाकर मनुष्य और अन्य योनियों को उत्पन्न करते हैं और उसके बाद मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं कि जो करना चाहो करो। क्योंकि स्वतंत्रता, पता है स्वतंत्रता क्यों देते हैं, फ्रीडम क्यों देते हैं कि जो करना है करो? क्योंकि उससे तुमसे भक्ति नहीं करवानी है, पूजा नहीं करवानी है। पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले तो करोड़ों भरे हुए हैं यहाँ संसार में, तो सिर्फ 25% व्यक्ति योनियां हैं, बाकी 75% जो लोग हैं भगवान के भक्त हैं वो तो गौलोक वृंदावन धाम में। अगर भगवान को भक्ति ही करवानी होती तो फिर वहां पर संतुष्ट रहते, लेकिन भगवान यहाँ पर, भगवान क्या चाहिए भगवान को? क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ प्रेम की परीक्षा कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? आप किसी को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं है उसको, दूसरों की इधर देखने की इजाजत नहीं है, कुछ और उसके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई और माया नहीं है, तो प्रेम की परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा केवल स्वतंत्रता से होती है। अगर आपको बाध्य कर दिया जाए कि एक ही व्यक्ति है उसी से प्रेम करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर प्रेम साबित कैसे होगा? इसीलिए उसने इस संसार में अनेकों प्रकार के आकर्षण रखे हैं, बहुत सी अट्रैक्शंस हैं जहां से हमारा मन डाइवर्ट हो सकता है, हम अपने प्रेम को डाइवर्ट कर सकते हैं। अब भले वो भी इन्हीं के ऐश्वर्य हैं, यानी कि संसार में जो जो ऐश्वर्य आपको नजर आते हैं प्रेम करने योग्य, जो जो चीजें नजर आती हैं जैसे धन, सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति, यही चीजें हैं जिससे हम संसार में आकर्षित होते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्य सेव शरणम भग इति गण। जो सारे के सारे धन, सारी की सारी सुंदरता, सारी की सारी शक्ति, सारे के सारे ज्ञान, सारे के सारे वैराग्य, सारे की सारी कीर्ति के मालिक हैं, वो हैं भगवान। और वो देखना चाहते हैं कि कौन मेरे पास आता है और कौन मेरी माया को अपनाता है। टोटल फ्रीडम देते हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न भी सॉल्व हो रहा है कि अन्य धर्मों में केवल एक ही खुदा है और हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? इसका उत्तर भी यही है कि कृष्ण को आपकी पूजा उपासना की नहीं, आपके प्रेम की आवश्यकता है। कृष्ण आपके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर एक ही चॉइस हो तो परीक्षा कैसे होगी? प्रेम तो तब साबित होगा जब करोड़ों की लाइन में से एक कृष्ण को चुना जाए। इसीलिए तो कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण प्रेम के सागर हैं और हम क्योंकि कृष्ण के अंश हैं तो हम में भी प्रेम मुख्य वस्तु है। अब प्रेम हमारे अंदर भी जब से पैदा हुए ना, प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है प्रेम के लिए, लेकिन उसे उसका वास्तविक प्रेम कृष्ण के साथ है। लेकिन क्योंकि संसार में आकर गुण हावी हो जाते हैं, फिर जब माँ उठाती है तो उसे लगता है प्रेम कर रही है, माँ की गोद में खुश हो जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है प्रेम डाइवर्ट होता है, ये उसे लगता है ये वो प्रेम नहीं है जैसे मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए था। थोड़ा बड़ा होगा बाप से प्रेम करने लगता है, बाप बाहर लेकर जाता है, घुमाने लेकर जाता है, चीज देकर देता है। थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लगता है नहीं ये वाला प्रेम नहीं चाहिए था मुझे, ये प्रेम वो नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर दोस्तों में प्रेम ढूंढता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है गर्लफ्रेंड में प्रेम ढूंढता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है पत्नी में प्रेम ढूंढता है, और बड़ा होता है बच्चों में प्रेम ढूंढता है, और बड़ा होता है तो अपने जो है ना बच्चों के बच्चों में प्रेम ढूंढता है। प्रेम उसके अंदर है। प्रेम कहाँ से आया पता है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर प्रेम मुख्य वस्तु है। वास्तव में कृष्ण का ये प्रेम जो कि उसी को लौटाना है। जब मनुष्य संसार में आता है तो प्रेम को खोज रहा होता है, बहुत रोता है अपने प्रेमी को पाने के लिए, परंतु भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने से उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में प्रवृत्त हो जाता है। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीव आत्मा को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। अब आप अपनी भगवद गीता जो हिंदी रीडर हैं वो निकालिए, पेज नंबर 138, 138, इंग्लिश रीडर 218, 218, 218, और उर्दू पढ़ने वाले पेज नंबर 152, 152, चैप्टर 3, टेक्स्ट नंबर 37। इसके तात्पर्य में देखेंगे, पेज निकाल लिया सबने। पापा ने श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, When a living entity comes into the contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into the lust in association with the mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust. अरे ये यानी कि कृष्ण प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका विशुद्ध शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में प्रेरित हो जाता है। अब कृष्ण ने उसको प्रेम क्यों दिया था? शुद्ध प्रेम दिया था किसके लिए? कि मुझे प्रेम चाहिए, तुम संसार में जाओ और सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ मुझे प्रेम करके दिखाओ, करो। लेकिन क्योंकि रजोगुण का संपर्क यहाँ पर हो गया तो वो काम कैसे हो गया? चेंज हो गया हवस में। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं हो पाती है तो क्रोध प्रेरित हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीव का सबसे बड़ा शत्रु काम है। भगवान ने कहा विद्यैनमिह वैरिणम्, काम है, और यह काम ही जो विशुद्ध जीव आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरणा दे रहा है। क्रोध अभी यहाँ पर ये काम है, ठीक है। अब अब हम इसका सेकंड पैरा देखेंगे। जो सेकंड पैरा है ना, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड एक्सपेंडेड हिमसेल्फ, हाँ, अपनी नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया। भगवान ने क्यों नित्य वर्धमान, यानी कि अपने चिदानंद, अपने आनंद के लिए भगवान ने अपनी शक्तियों को विस्तृत किया। भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार किया, फैला दिया, कर लिया, और जीव आत्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। अब जीव आत्माएं तो भगवान के अंश है ना, भगवान के आनंद पहुंचाने के लिए है ना, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब भगवान ने उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन अब क्यों, क्योंकि हम संसार में जो भी क्रिएशन करते हैं ना, उनमें हम लोग उनको स्वतंत्रता नहीं दे सकते, उनको बुद्धि नहीं दे सकते, उनके अंदर आत्मा नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, तो वो सोचती नहीं है कुछ भी। कोई अब कोई आप चीज बनाओ, जैसे आपने अगर कोई मोबाइल बनाई है और बनाने के बाद वो मोबाइल ये सोचे कि मुझे क्यों बनाया। अब कोई बच्चा अगर उसको उठा रहा है, गंदे हाथ लगा रहा है, या फिर गिरा रहा है, बार बार टूट रही है, तो मोबाइल ये सोच नहीं सकती कि भाई मुझे क्यों बनाया था, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बस उसको ये सोचने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी शक्ति है, आपने उसे बनाया, भले वो उसको तोड़ा जाए, खराब किया जाए, जो भी किया जाए, उसकी हमारी मर्जी ना, हमने उसको क्रिएट किया है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को कितना हमारा ख्याल है, हम उसकी शक्तियां हैं, और हम सामने जाके भगवान को बोलते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। मतलब हम कहने के योग्य हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की शक्ति हैं, जैसे चाहे वो यूज करें हमें। तो यहाँ पर फिर भी कृष्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने अपने आनंद के लिए इन सबको अपने आप को ही अलग अलग रूपों में विस्तार किया, और जीव आत्माएं उनके सिद्धानंद के अंश ही हैं, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब थोड़ी सी भगवान ने उनको स्वतंत्रता दे दी कि चलो चॉइस तुम खुद करो कि किस तरह से सुखी होना चाहते हो। किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो काम की चपेट में आ जाते हैं। स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है, भगवान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया अपने आनंद के लिए, और शक्ति को थोड़ी सी आजादी दे दी, और उस शक्ति ने उस आजादी का इतना दुरुपयोग किया कि नहीं, तुमने मुझे बनाया है तो क्या हो गया, मेरा अपना एक अस्तित्व है, तुम्हें क्यों खुश करूं, मैं खुद को खुश करूंगी। इंद्रिय तृप्ति के सुख में बदल जाते हैं और काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीव आत्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। फिर संसार भगवान ने सारी जो सारी कितनी सारी काम पूर्ण इच्छाएं, जो उसकी इच्छाएं बढ़ती गई ना, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो भगवान ने इस संसार में जीव आत्माओं की इन इच्छाओं को, देखो भगवान कितने कृपालु हैं, जो तुम्हारी इच्छाएं उसके अनुसार रचना कर दी, सारी तुम्हारी काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधाएं प्राप्त करने के निमित्त की है ये सारी रचनाएं, और ये बोला करो, एंजॉय करके देखो ना, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, कोई मैं तुमको घसीट के अपने पास जबरदस्ती बलात् अपने से प्रेम करने के लिए विवश नहीं करूंगा, तुमको मैं सारी सारे सुख की सामग्री संसार में दे रहा हूं, तुम करके देखो, तुम सुखी हो के दिखाओ मेरे बगैर। भगवान ने उसको सारी रुचिकर चीजें इस संसार में दी। आगे जब जीव आत्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है, अब जीव आत्मा जो है ना, वो पहले तो भगवान की ओर देखती भी नहीं है, सोचती है कि बहुत, जैसे हम जो वृक्ष के ऊपर पक्षी ढूंढ रहे थे ना, वो पक्षी क्या करता है, फलों को खाता है, इस फल के बाद फिर उस फल को चख के देखता है, फिर उस फल को, जैसे हम कभी किसी से प्रेम करके देखते हैं, कभी किसी से प्रेम करके देखते हैं, कभी किसी से किसी आनंद प्राप्त करें, कैसे धन कमाएं, कैसे अच्छा लाइफस्टाइल बनाए, तो इसे करते करते दीर्घ काल तक, मतलब बहुत बहुत जन्मों तक अपने काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाते हैं। जब बहुत दिल खट्टा हो जाता है, पता चल जाता है कि नहीं है सुख इस संसार में, ढूंढ के देख लिया, सर्च करके देख लिया, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिसे ये पता चल जाता है कि संसार में कुछ सुख नहीं है, वो ज्ञानी होता है और वो मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ऊब जाते हैं तो वो अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। फिर क्या करता है, फिर वो जानने की कोशिश करता है कि इस संसार में जो कुछ भी है उससे तो मुझे सुख मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या हूँ, जिज्ञासा। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि भगवान ने क्यों बनाया, भगवान ने अपने आनंद के लिए बनाया था। अब सेकंड क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द कृष्णास पर्पस बिहाइंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि भगवान का उद्देश्य क्या है। अब देखो हम जैसे संसार में जब कोई साइंसदान कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाता है, कोई चीज नई बनाता है, क्रिएशन कोई होती है, तो उस प्रोडक्ट के साथ, उस इंस्ट्रूमेंट जो भी नया बना होता है उसके साथ एक मैनुअल गाइड आता है, सही है। अब जो बुक आई है उसके साथ वो हमें बताएगी कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने जब मनुष्य को बनाया उसके साथ साथ शास्त्र बनाए, उसके साथ साथ वेद बनाए। अब अगर हम लोग कोई नया नया कोई प्रोडक्ट खरीद करके आ जाए और उसके साथ जो उसकी बुक मिली है जिसको हमें यूज करना भी नहीं आता है, उसके साथ जो बुक मिली है उसको हम आते ही कचरे के डब्बे में फेंक दे के भाई वो तो हमें पढ़ नहीं आई है, और उस प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से यूज करें जैसे हमारी मर्जी हो, उसको हम उस तरह से यूज करेंगे तो क्या होगा, ना तो हम उस प्रोडक्ट को सही तरह से यूज कर सकेंगे बल्कि यूज तो क्या, उसको बिगाड़ ही देंगे। उसी तरह भगवान ने जब हमें संसार में बनाया है, मनुष्य को बनाया है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे शास्त्र दिए, सबसे पहले वेद दिए, और उसमें ये बताया गया है कि इस मनुष्य जीवन को जो मैंने बनाया है उसको कैसे यूज करना है, वो इसको यूज करने का क्या क्या विधि है, वो सारी भगवान ने शास्त्र में रखी। लेकिन आज हम दुखी क्यों हैं? हमारे दुखी होने का कारण ये है कि हम इस प्रोडक्ट को जो भगवान ने बनाया है, अपनी शक्तियों को यूज करके जो ये प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है, उसके साथ जो मैनुअल गाइड्स हैं, जो बुक्स हैं, जो शास्त्र हैं, उनको यूज नहीं करते, उनके हिसाब से इसको यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं। अब देखो भगवान ने जिस तरह हम यहाँ पर संसार में कोई जो मैनुअल गाइड होता है ना उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, अलग अलग पोर्शंस होते हैं, पहले लिखा होता है कि भाई ये चीज, ये जो मैंने अभी जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया है, जो प्रोडक्ट है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ऐसा होता है। फिर इसकी सफाई कैसे होती है, इनको कहाँ पर रखना चाहिए, स्टोरेज कहाँ पर होना चाहिए, लिखा होता है ना ऑल द मेडिसिन कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब किस सनलाइट से दूर रखना है, कहाँ पर रखना है, फ्रिज में रखना है या ठंडी जगह पे इसको रखना चाहिए। और बाद में ये लिखा होता है कि इसको, इसका यूज किस तरह से, कुछ एक जगह एक होता है हाउ टू यूज लिखा होता है ना, सबसे जो मेन हम लोग जो देखते हैं ना वो चीज क्या देखते हैं, हाउ टू यूज, ठीक है। अब भगवान ने भी जो शास्त्र दिए हैं उस, अब भगवान की जो इन्वेंशन है वो सब सारी चीजों से सबसे बढ़कर है, तो भगवान ने उसके लिए भी जो शास्त्र दिए हैं, जो मैनुअल गाइड है वो भी बहुत बड़ी है और बहुत असीम है, तो उसमें भी हर चीज बताई गई है कि किस, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना 13वां अध्याय और 14वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं वो पता है वो इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई है। जैसे हम लोगों ने कैसे पढ़ा भगवद्गीता के 13वें अध्याय में 13.22 पेज नंबर 436 हिंदी में, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ति प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। इस भगवान ने कहा इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। जब जीव और प्रकृति, पहले तो भगवान ने बताया ना जीव के अंदर, मैंने प्रकृति के अंदर जीव को फिट कर दिया, फिर क्या करता है तीनों गुणों का भोग करता है, और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। अब ये चीजें मिल गई हैं तो उसे उत्तम और नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत अच्छा बताया। प्रकृति तथा जीव अनादि हैं, ये दोनों आपस में मैंने मिला दिए थे, क्षेत्र इति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सब हमने पढ़ा ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं कि किस तरह से बना और कौन कौन सी चीजें इन पर असर कर रही हैं। अब हमें वो पोर्शन देखना है कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें तो हम पढ़ ही रहे हैं भगवद गीता में, अब हाउ टू यूज, यानी कि व्हाट वाज द पर्पस, भगवान को इस मनुष्य जीवन के मनुष्य योनि को बनाने के पीछे पर्पस क्या था कि वो क्या करे आकर। अब देखो स्वतंत्रता दी है ना, यहाँ पर भी है ऐसा। देखो आप अगर कोई मार्केट से जैसे एक मोबाइल लेकर आओ, मोबाइल को यूज करने का तरीका तो उस किताब में लिखा होता है ना कि इस तरह से ये बटन दबाओगे तो आप है ना सारी चीजें डाउनलोड करोगे, ये बटन दबाओगे तो आप चैट कर सकते हो, ये बटन दबाओगे तो व्हाट्सएप आप यूज करोगे, ये करोगे तो एफबी ये। लेकिन जब आप खरीद के आ जाओ तो आपको कोई है ना बलात् आपको ये नहीं कहेगा, जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आपको इसके साथ ही करना। आपकी मर्जी है, आपका मोबाइल है, अगर आप उससे चैट नहीं करना चाहते, आप उससे फोन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि देखो ये कील है ना कील, अब कोई आपको ये कील दीवार पर ठोकनी है, आपकी मोबाइल है, आप उससे हथौड़े का काम लेना चाहते हो तो आपको कौन रोक सकता है? आप क्या करोगे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? खाली आपकी मोबाइल खराब हो जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बेकार करी जाएगी, उसने जिस उद्देश्य से जन्म लिया था वो उद्देश्य जाया हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप उस मैनुअल गाइड को नहीं रीड कर रहे हो, अपनी मर्जी से उसको यूज कर रहे हो, उससे हथौड़े का काम ले रहे हो। आपको कोई भी मना नहीं करेगा, आपकी चीज है आप करो। तो उसी तरह से जीवन भी भगवान ने आपको दे दिया, अब आपको कोई मना नहीं करेगा। आपके कोई आप बोलते हो ना कि भाई हमारा क्या कसूर है, अब कसूर क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले हमें ये बता दिया जाए कि इस पहले ये बता दूं कि इस मनुष्य जन्म में आपको भगवान ने जिस उद्देश्य डाला है वो उद्देश्य लिखा हुआ है शास्त्र में। अब कोई बोल अगर कोई बोलता है कि भाई हमें ज्ञान नहीं था कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, तो फिर मैं आपको इसका रिप्लाई देती हूँ। पहले इग्नोरेंस नॉट मीन्स दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम द लॉ। अगर आपको नहीं पता है कि कानून क्या है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून से बच जाओगे। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, सामने रेड बत्ती जल रही है और आप रोड क्रॉस कर लेते हो, तो और जब आपको आता है ना वो जो ट्रैफिक पुलिस वो आके बोलता है कि अभी रेड लाइट जल रही थी, आपने क्रॉस क्यों किया, तो आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी क्या गलती है? तो बोलेगा पता ही नहीं था, मनुष्य बने हो, गाड़ी तुमने ले ली है और है ना तुमको ये भी पता नहीं कि ड्राइव कैसे करना है, आपको ये भी इतनी भी अक्कल नहीं है, चलाने की जरूरत क्या थी गाड़ी जब तक तुम्हें ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है। उसी तरह मनुष्य जन्म लिया है, ये शास्त्र दिए हैं भगवान ने, किताबें खाली सजा कर रखने के लिए वेदव्यास जी ने नहीं बनाए, हमारे पढ़ने के लिए बनाई है। और अगर हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, काल आ जाएगा उसको बोलेंगे भाई हमने तो पढ़ी नहीं थी किताब, हमें किसी ने बताया ही नहीं था, तो फिर है ना इसमें हमारी क्या गलती है? वो भी बोलेगा मनुष्य बने हो, कुत्ता नहीं बने थे तुम, सुअर नहीं बनाया था कि तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, मनुष्य बने थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम किस तरह से इस मनुष्य जय को यूज करो, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें इच्छा तो करनी चाहिए थी। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोलते हैं 7.21 में, यो याम याम तनिम भक्ता श्रद्धया से तुम इच्छति तस्य तस्य आचराम श्रद्धा तामे व विदधाम्य हम। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगी, करूंगा, कृष्ण कहते हैं मैं पूरा करूंगा, लेकिन पहले आप इच्छा तो करो कि मुझे सीखना है। मनुष्य बने हो, जानवर नहीं हो, शास्त्र तुम्हारे लिए बने हुए, पूरी जिंदगी खत्म हो गई और ये भी नहीं देखा कि मेरे लिए भगवान ने क्या लिखा है शास्त्र में, मेरे साथ जो मैनुअल गाइड आया उसमें लिखा क्या था। पहले हम वो वाले श्लोक पढ़ लेते हैं जो कि भगवान ने हाउ टू यूज दिस ह्यूमन बॉडी इसके विषय में कहा है। अब ये भागवतम का श्लोक है, ठीक है, भागवतम के 2-3 श्लोक में कोट करूंगी यहाँ पर। श्रीमद भागवतम 1.2.6 पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 6, हिंदी भगवद गीता में पेज नंबर 94 हिंदी भगवद गीता में, और उर्दू भगवद गीता में है पेज नंबर 88 में, बस इंग्लिश सॉरी भागवतम महापुराण, हाँ भागवतम महापुराण पेज नंबर 88 उर्दू में और पेज नंबर 94 हिंदी में, मेरे पास इंग्लिश में नहीं है, लेकिन श्लोक है 1.2.6 पहला सिकंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 2, उसमें भगवान श्री कृष्ण सॉरी वेदव्यास जी बताते हैं सवय पुंसाम तरो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे। अहेतुकीय प्रतिहिताः ययात्मा सुप्रसीदति, कि वास्तव में तुम ये मनुष्य, तुम ये इंसान नहीं हो, मतलब ये जो देह है ना, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब पहले तुम्हें ये पता चलना चाहिए ना कि तुम कौन हो। अब लेकिन फिर भी क्योंकि इस प्रकृति के साथ तुम्हारा सम्मिलन हो गया है, तो तुम्हारे दो कर्तव्य बन जाते हैं। कौन कौन से कर्तव्य बन जाते हैं? एक तो जो प्रकृति है, तुम्हारा जो शरीर है, उससे रिलेटेड कर्तव्य होते हैं, और दूसरे जो तुम्हारी आत्मा से रिलेटेड कर्तव्य होते हैं। इन दोनों को आपको साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि आप शायद सी बात है, शरीर भी हो, ये शरीर किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी की बीवी है, किसी का क्या है, तो उसके उससे रिलेटेड भी उसको सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, और जो वास्तव में ये आत्मा है उससे रिलेटेड भी उसको कर्तव्य पूरे करने, दोनों पूरे करने। अब इसमें क्या गया, सवय पुंसाम, सब मतलब यकीनन ही, पुंसा मतलब इंसानों के लिए, जो मनुष्य है ना उनकी बात हो रही है। यहाँ पर किसी जाति की बात नहीं हो रही है, मनुष्य मात्र की बात होती है। यह सवय पुंसाम परो धर्मो, यानी कि वैसे तो मनुष्य के बहुत सारे कर्तव्य हैं, परो देखो परा प्रकृति है ना, वो वास्तव में तो उसका परा प्रकृति का परा धर्म भी होना चाहिए, ठीक है। अपरा प्रकृति के धर्म यहाँ पर बताए नहीं गए, क्योंकि वो तो सबको पता है, छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी पता है मुझे स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म पहननी है, और है ना टीचर ने जो बोला है होमवर्क करना है, और जो घर में जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल जाहिल लड़की होती है ना, उसको भी पता होता है कि मुझे घर में खाना बनाना है, वरना मुझे मार पड़ेगी पापा और है ना सब डांटेंगे आकर। सबको पता होता है ये जो अपरा प्रकृति के कर्तव्य है ना, वो डिस्कस करने के योग्य ही नहीं है। परो धर्मो यहाँ पर बताया है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, और वो क्या धर्म है कि भगवान अधोक्षज, भगवान की भक्ति की जाए। अधोक्षज का क्या मतलब होता है, वह भगवान जो आपके इन भौतिक नेत्रों से नहीं देखे जा सकते, जिनके लिए प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा हृदय के नेत्रों पर, और उससे आप को उसके दर्शन होंगे। और आगे वाले श्लोक में साफ साफ बताया है वासुदेवे भगवती के, भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति योगा प्रयोजता, कि भक्ति करने के योग्य केवल वसुदेव के पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण ही है। ये बात में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया अधोक्षक भगवान की भक्ति करना ही आपकी परा प्रकृति का वास्तविक कर्तव्य है। और भक्ति कैसी करनी चाहिए, अहितुकी या प्रतिहिता, अहितुकी मतलब उसके अंदर आपका कोई हित नहीं होना चाहिए, आपकी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस योग्य नहीं हो कि अपनी कोई गर्ज रखो, आप तो उसकी शक्ति हो, उसका अंश हो, आपका कार्य है ये करना। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, वो मेरी सेवा कर रही है, तो वो कोई मुझ पर एहसान नहीं कर रही है। उसी तरह भगवान ने बनाया, बोला देखो ये बेचारा सारा दिन भगवान की भक्ति करता रहता है, भगवान को भी याद कराते हैं, भाई भगवान मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की, तुमने अगर सेवा की है तो भगवान पे कोई एहसान नहीं किया है, तुम्हारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पर बताया कि आपका पहला फर्ज ही ये है कि भगवान की भक्ति करो, और कैसी करो, अहेतु की। उसके लिए ये मत बोलना भगवान को कभी सुख संपत्ति घर आवे दुख कष्ट मिटे तन का, ये सब नहीं, मेरा कर्तव्य है, सुख आता है नहीं आता है, मेरे कष्ट दूर होते हैं नहीं होते, मेरा कर्तव्य केवल एक है, अहितु की अप्रतिहिता। अप्रति मतलब उसमें कोई डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक साल किया, दो साल किया, दस साल किया, बस मैं कितने सालों से भगवान की भक्ति कर रही हूँ, थक गई हूँ, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा तुम्हें क्यों हो, तुम तो भगवान की शक्ति हो, भगवान ने तुम भगवान की ताकत हो, अपनी ताकत को मैं अपनी मर्जी से यूज कर रही हूँ। जैसे मेरी आंखें, अगर सारा दिन जैसे मेरी आंखें मेरी शक्ति है, ठीक है, मेरे जिस्म का अंश है, तो वो अगर टीवी देख रही है मुझे आनंद मिल रहा है, तो एक दिन देखें, दो दिन देखें, और मुझे बाद में बोले दस दिन के बाद में, तो दस दिन से आपके लिए टीवी देख रही हूँ मैं, तो थक गई हूँ तुम्हारे लिए देख देख कर, ऐसा बोलेंगे कभी? उनका कर्तव्य है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी से चलेगी ना वो ये थोड़ी सोचेगी कि अब थोड़ी देर के लिए मुझे ये, मैंने इसका इतना टीवी इतनी देर तक देखा है, तो ये मुझे थोड़ा रिलैक्स करे, मेरी भी थोड़ी सेवा करे, ऐसा बोलेंगी? अंश कभी भी नहीं जाएगा कि पूर्ण भी उसकी सेवा करे। लेकिन ये मनुष्य इतना नालायक, इतना बेईमान है कि वो संसार में आकर जिन शरीर दियो तिन बिसरायो कैसो नमक हरामी, ऐसा नमक हराम ये इंसान होता है कि वो बोलता है कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया, भगवान तुमने मेरा भाग्य पढ़ने लिखने से पहले एक बार पढ़ तो लिया होता कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। ऐसे बोलते भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुम हो कौन भगवान के साथ सवाल करने वाले, उसकी प्रकृति हो, तुम्हारा एक ही काम है, भगवान की शक्ति हो, भगवान शक्ति का एक ही काम है शक्तिमान की सेवा करना। और उसका कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है, सवै पंसाम परो धर्मो यतर भक्ति अधोक्षजा अहेतुकीय प्रतिहिता। इससे क्या होगा, क्योंकि ये परो धर्म है, इससे क्या होगा, ययात्मा सुप्रसिद्धति, इससे ये नहीं होगा कि तुम्हें कष्ट मिलेगा। जब इंद्रियां अपने शरीर की यानी कि पूर्ण की जब अंश होते हैं, जब पूर्ण की सेवा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उन इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलती है। बल्कि जैसे अब पेट में खाना डालते ना, तो सारी इंद्रियां काम करती हैं, जैसे हाथ खाना बनाते हैं, पकाते हैं, फिर पीस करते हैं, जैसे पहले पेड़ जाते हैं मार्केट से सब्जी परचेज करके आते हैं खाना वाना, और हाथ उनको बनाते हैं, फिर मुंह चबाता है, दांत उसको मना खाते हैं, जो हमारी नेक है उससे अंदर जाता है, पूरा डालते किसने, पेट में डालते ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी इंद्रियां अतुष्ट ही रह गई, असंतुष्टि रह गई, वो संतुष्ट जब पेट खाना खाएगा ना, पेट के अंदर डालेंगे ना, तो सारा का सारा शरीर स्वतः सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर कभी हाथ ये सोचे कि मैं क्यों पेट को खिलाऊं, मैं खुद खाऊंगा, मैं अपनी मेहनत का पेट को क्यों खिलाऊं, या फिर आंखें ये सोचे कि सारा दिन मुंह ही खा जाता है, मुझे भी खिलाना चाहिए, इस तरह से क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी, ये गलती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है, रॉन्ग वे है। अगर सारे शरीर को खुश होना है तो फिर सारे अंशों को पूर्ण की सेवा करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है उसे यदि खुश होना है, देखो इसी श्लोक पर जा रहे हैं, मैं श्लोक कोट कर रही हूँ और मैं बाद में इसकी पिक भी भेज रही हूँ श्लोक की। इसमें लिखा हुआ है अहितुकीय प्रतिहिता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे बगैर किसी गर्ज के और बगैर किसी डिसकंटिन्यू किए हुए, तो क्या होगा, इसी से हम सुकून हासिल कर सकेंगे, इसी से हम मुतमईन हो सकेंगे, इसी से हमें शांति प्राप्त हो सकेगी, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कहा ना, पिछले जब श्लोक में हम पढ़ते आए हैं उसमें क्या कहा था कि जब संसारिक सारी चीजों से खुद को खुश करके 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 खत्म थक जाती है, फिर क्या करती है। यहाँ पर मुझे उसी श्लोक को थोड़ा आगे करना था, प्लीज भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 37 को एक बार फिर से देखिए, जहाँ से हमने छोड़ा था, जो लास्ट वाला पैरा है ना, कि देखो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि वो ऊब गई थी, कि संसार की जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना वो खत्म करके थक गई थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जिज्ञासा कहाँ से करेगी, शास्त्र से करेगी ना, भगवान ने ये शास्त्र बनाए क्यों है, ताकि आप अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करो, और यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। इसमें क्या कहा गया, अब वेदांत सूत्र में क्या कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ से शुरू होता है कि अब आपके कष्टों का निवारण, पहले तो क्या हुआ, संसार में आ गए, गुणों में फंस गए और सोचा कि मैं खुश हो जाऊं, लेकिन जब पता चला कि इस संसार में खुश नहीं होंगे, तो फिर जिज्ञासा करनी शुरू की, और ब्रह्म जिज्ञासा पहले, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, 1.1.1 जन्मादस्य यतन वायादि तरतस, कि सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म से है। अतः काम, अब देखो यहाँ पर जो इच्छा हमारे हृदय में हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है, काम जो हो रहा है, जो कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि शुद्ध कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से किसमें चेंज हो जाता है, हवस में, काम में हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जन्मादस्य यतन व्यादि तरह से, जो कुछ भी संसार में है वो सब भगवान से है, इसका मतलब है जो काम है, जो इच्छा है वो किधर से आई है, वो भी भगवान से आई है, इसीलिए आगे बताते हैं। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अगर आपके अंदर काम है, आपके अंदर हवस है, आपके अंदर कोई भी दूसरी दुर्भावना जिसको आप समझ रहे हो वो भी है ना, तो वो भी किधर से आई है, कृष्ण से आई है, कृष्ण से हटकर कुछ नहीं है। अब काम भी कृष्ण से आया है, लस्ट जिसको बोलते हैं वो भी कृष्ण से आया है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में प्रेरित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हैं, तो
काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। यानी कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, कृष्ण को खुश करना है। अब मेरे अंदर इच्छा आई है, उत्पन्न हुई है, तो उसको कैसे करना है, इतना श्री प्रभुपाद जी कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं कि अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में प्रेरित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। भगवान, अब यहाँ पर थोड़ी मिसालें देते हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने रावण की पूरी को, स्वर्ण पूरी जो लंका थी उसको जला दिया था, अपना क्रोध प्रकट किया था, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे प्रेमी भक्त बन गए थे। यहाँ पर भी कहाँ पर, ये युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं कि शत्रुओं को क्रोध से मारो, क्योंकि क्रोध जब तक नहीं होगा तो शत्रुओं को नहीं मारेंगे। अतः काम तथा क्रोध भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त होने से हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। यानी कि इच्छा जो भी है, यहाँ पर जो बताया गया कि अगर आप ये सारी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी किसके लिए यूज करोगे, भगवान की भक्ति के लिए यूज करोगे, चाहे वो काम हो चाहे क्रोध हो, तो वही आपका परोधर्म है, वही आपका वास्तविक धर्म है। अब यहाँ पर ये तो बात हुई, अब ये जो परा प्रकृति है ना उसके कर्तव्य की, तो यहाँ पर हमारे हम अपरा प्रकृति हैं, उनके भी कर्तव्यों का थोड़ा सा बात, थोड़े उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि शास्त्रों में अपरा प्रकृति के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। वेद में बताया गया कि मनुष्य को संसार में आने के बाद चार पुरुषार्थ कमाने होते हैं। चार पुरुषार्थ, नाम सुना होगा, मनुष्य हो पता होना चाहिए, क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार चीजें जो हैं, वही सारा संसार में आने के बाद हमें ये चार चीजें जरूर करनी होती हैं। ये हमारा ये जो अपरा प्रकृति है ना उसका लक्ष्य है। ये जो अभी ये क्या है, किस तरह है, मैं आपको संसार में जिस तरह इसको यूज किया जाता है उसको भी बताऊंगी, और जो शास्त्र में लिखा हुआ है उस तरह। अब धर्म, धर्म का क्या मतलब होता है? धार्मिक कार्य करना, जैसे अच्छा काम जो भी करते हैं ना, भक्ति करना भगवान की, या फिर ना एकादशी रखना, उपवास रखना, यज्ञ करना, दान देना, ठीक है, मनुष्य को ये करना होता है ना, ये धर्म है, ठीक है। उसके बाद अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन अर्जित करना। जब मनुष्य संसार में है वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कर ही रही, खाली यही कर रहे हैं समझो, अर्थ को जमा करना, ये मनुष्य, ये अपरा प्रकृति है ना उसका कारण। ये चार काम होते हैं अपरा प्रकृति के, कौन से? धर्म, भक्ति करना, अर्थ मतलब धन अर्जित करना। अब धन अर्जित करना ये भी होता है, और उसके अलावा ये भी होता है अर्थ का मतलब कि अपने जीवन के लिए सुविधाएं प्राप्त करना, जो जो, और हाँ, धन अर्जित करना होता है अर्थ का मतलब, और काम का मतलब होता है अपनी इच्छा पूरी करना। काम, अब इच्छा कोई भी हो सकती है, काम को खाली लस्ट नहीं बोलते हैं, कोई भी इच्छा हो सकती है, खाने की भी हो सकती है, घूमने फिरने की भी हो सकती है, अच्छा परिवार हो, पत्नी हो, पुत्र हो, इत्यादि जो भी इच्छा होती है ना काम। अब मनुष्य है तो ये इच्छा भी उसको पूरी करनी है, ठीक है। और मोक्ष, यानी कि मोक्ष के लिए उसको प्रयत्न करना है, ये चार पुरुषार्थ हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं? श्लोक नंबर, पता है कौन सा है, मैं अभी बता रही हूँ, चैप्टर नंबर श्रीमद् भागवतम 1.2.10, पहला सिकंड, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 10, पेज नंबर 95 है उर्दू भगवत गीता में, और पेज नंबर 100 है हिंदी भगवत गीता में। अब ये चार चीजें समझ में आ गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ जरूरी हैं। देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ उसको आप पहले माइंड अप करो कि मैं क्या बता रही हूँ, कि आपको इस संसार में क्यों भेजा गया है, उसके लिए भगवान ने जो लिखा है शास्त्र में, जो मैनुअल गाइड मिला है, हाउ टू यूज दिस ह्यूमन बॉडी, इसके विषय में जो लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए बगैर अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को यूज करेंगे तो उसका सत्यानाश करेंगे। अब भगवान ने क्या कहा, इस संसार में आके पहले तो बोला परोधर्म क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और वो भी बेगर्स भक्ति होनी चाहिए, कंटिन्यूअस भक्ति होनी चाहिए, इसी से आपको सुख मिलेगा। अब इस अपरा प्रकृति के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कामस्य, जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं ना 1.2.10, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, यानी कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्य चेह कर्म भी। ये जो अपरा प्रकृति के कर्तव्य है ना, वो बहुत लेंदी टॉपिक है। मैं आपको ये नेक्स्ट बना के बताती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपके सारे क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, इसलिए ये भी आप उसके साथ ही कंटिन्यू करना। आज इतना पढ़ो और आगे में जो दूसरा क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया है इसमें से, कि आपके कौन कौन से कर्तव्य है शास्त्रों में बताए गए हैं, किस तरह से यूज करना है, ये भागवतम का 1.2.10 और 9 जो श्लोक है वो मैं आपको कल इसके विषय में बताऊंगी। और ये आप पढ़ लो और मुझे बताना कि यहाँ तक आपको कितना समझ में आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।